हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद घर पर यही सोचकर आया था कि वो शिवांशा के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन शिवांशा की आंखों में आंसू देखकर उसका सारा मूड खराब हो गया था। ऊपर से जब उसे पता चला कि ये सब किचन में काम करने वाली दो हाउस हेल्पर की वजह से हुआ था, तो वेद और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उन दोनों को काम से निकालने के बाद वेद जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर शिवांशा के पास जा रहा था। उन लोगों ने शिवांशा को जो भी कहा था, वो पूरी बात जानने के बाद वेद समझ सकता था कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा। जब वेद ऊपर कमरे में पहुंचा तो शिवांशा परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। वेद ने उसे कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। वेद को देखते ही शिवांशा अपनी जगह पर रुक गई। वो जल्दी से उसके पास गई। सबको यही लग रहा होगा कि मैंने बेवजह तमाशा खड़ा कर दिया। वैसे भी इस घर में काम करने वाले लोगों को लगता है कि आपकी पत्नी होने का मैं गलत फायदा उठाती हूँ, शिवांशा ने नजरें नीचे करके धीमी आवाज में कहा। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें यही करना चाहिए। होते कौन है वे या कोई और ये डिसाइड करने वाला कि तुम मेरे लायक हो या नहीं हो, वेद ने सख्त आवाज में कहा। उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। शिवांशा बिल्कुल शांत हो गई थी। वेद ने गहरी सांस लेकर दांत पीसते हुए कहा, उनसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है, जो उनकी बकवास बातें सुनने के बाद तुम उन पर यकीन कर बैठी और इस वजह से पूरे दिन रो रही थी। तुमने एक बार भी मुझे कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा, शिवांशा ने जल्दी से वेद की तरफ देखकर कहा। लेकिन मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता है। इसी के साथ वेद को एहसास हुआ कि अभी भी शिवांशा के पास मोबाइल नहीं था। लास्ट टाइम अरमान ने उसे बात करने के लिए फोन दिया था, तब वेद ने ही उसे गुस्से में तोड़ दिया था। क्या तुम्हारी डिमांड सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई ही है? कभी खुद के लिए भी कुछ मांग लिया करो, वेद ने सिर हिलाकर कहा और तुरंत अपना मोबाइल निकाला। उसने दूसरी तरफ जाकर प्रतीक को कॉल किया। प्रतीक, तुम अभी भी ऑफिस में हो? वेद ने कॉल पर पूछा। जी भाई, बस थोड़ी देर में निकलने वाला था। आप बताइए, कोई काम हो तो? प्रतीक ने जवाब दिया। मुझे शिवांशा के लिए एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, कितनी देर में पहुंच जाएगा? वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर आगे कहा। शिवांशा उससे दूर थी, उसकी बातें सुन नहीं पा रही थी। वो बस उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। एक घंटे में भाई, मैं खुद लेकर आता हूँ, प्रतीक ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। वहीं प्रतीक से बात करने के बाद वेद शिवांशा के पास पहुंचा। शिवांशा की आंखें अभी भी नम थीं। वेद ने अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और फिर अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ किया। आगे से तुम किसी के लिए भी अपने इमोशंस वेस्ट नहीं करोगी। अगर कोई कुछ कहता है तो उसे जवाब देना सीखो, वेद ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन उनका कहना गलत नहीं था। मैं खुद को ठीक से मेंटेन करके नहीं रख पाती, और एक बार आपको देखिए, ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ पर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, शिवांशा ने भारी आवाज में कहा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो, वेद ने जल्दी से कहा। अनजाने में वेद के मुंह से उसके दिल की बात निकल गई। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। वहीं शिवांशा हैरानी से उसे देख रही थी। क्या कहा आपने अभी? शिवांशा ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। यही कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम में कोई कमी नजर नहीं आती, वेद ने उसे थोड़ा दूर जाकर जवाब दिया। वेद शिवांशा से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी से वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवांशा ने अपने दोनों हाथों से वेद की बाजू को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा। नहीं, उसके आगे क्या कहा? कुछ भी नहीं बोला। और बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर, पहले तो ठीक से जुबान नहीं चलती थी और अब आकर सीधा टच करने लगी हो, वेद ने उसे घूरते हुए कहा और फिर शिवांशा के हाथों को खुद से अलग कर दिया। ठीक है, मत बताइए। रही बात हिम्मत की, तो थोड़ी देर पहले कोई मुझे समझा रहा था कि मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, शिवांशा ने अपने हाथों को बांधते हुए बेपरवाही से कहा। जिनके सामने स्टैंड लेना चाहिए था उनकी बातें सुनकर पूरे दिन से रो रही थी, और यहां बंद कमरे में मेरे सामने स्टैंड लेने से कुछ नहीं होगा। बार बार मैं नहीं आने वाला तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद भी कुछ सीखो, वेद ने सिर हिलाकर कहा। जब तक आप मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का डर नहीं है, शिवांशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बात करते हुए उसकी नजर घड़ी की तरफ गई तो रात के 8 बज रहे थे। वेद को आए हुए पूरे 2 घंटे हो गए थे। वो हमेशा इतना जल्दी नहीं आता था। तो क्या आप मुझसे बात करने के लिए इतनी जल्दी आए थे? शिवांशा ने धीरे से पर एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, सोचा तो यही था, पर किसे पता था कि कुछ और ही देखने को मिलने वाला है। खैर छोड़ो, तुम तो अपने लिए कोई डिसीजन लेने वाली हो नहीं, सो मैं अरमान से कॉल करके तुम्हारे लास्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मंगवा लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि तुम्हें आगे क्या करना है, वेद ने बात को बदलते हुए कहा, ताकि शिवांशा उसे जल्दी आने के नाम पर परेशान न करे। इससे पहले कि वेद बाथरूम में चेंज करने के लिए जाता, शिवांशा जल्दी से उसके सामने आ गई थी। वेद उसकी इस हरकत पर उसे घूर कर देख रहा था, क्योंकि वो शिवांशा से लगभग टकराने वाला था। ये क्या था शिवांशा, बी केयरफुल, तुम गिर सकती थी, तुम्हें चोट लग जाती, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें बच्ची बुला रहा हूँ, वेद ने सख्त आवाज में कहा। उसके हल्का डांटने पर शिवांशा का चेहरा उतर गया था। शिवांशा बिना कुछ बोले वेद के आगे से हट गई थी। वो ऐसी ही थी,
अगर आजकल वो वेद के साथ खुलकर अपनी बात रख पा रही थी तो इसका कारण भी वेद ही था। उसने उसे अपने साथ कंफर्टेबल किया था और उसे इस बात का यकीन दिलाया था कि वो उसे सबसे प्रोटेक्ट करेगा। वेद ने आईज रोल की और कहा, अगर यही हाल रहा तो सच में मुझे अपने डिसीजन पर दोबारा सोचना होगा। कौन सा डिसीजन? शिवांशा ने जल्दी से पूछा। यही कि इमेच्योर और सबसे डरने वाली लड़की के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए या नहीं। वेद ने कंधे उचकाकर जवाब दिया और फिर बाथरूम में चला गया था। वेद ने इनडायरेक्टली अपना डिसीजन बता दिया था। शिवांशा का पूरा दिन बहुत बेकार गया था। वो पूरे दिन यही ओवरथिंकिंग कर रही थी कि सच में वो वेद के लायक है या नहीं। ऊपर से उसकी लाइफ में काफी कुछ हुआ था, लेकिन वेद की इस एक छोटी सी लाइन से शिवांशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने खुद नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन के बाद शाम को उसे एक अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। शिवांशा वेद के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि उससे इस बारे में बात कर सके। वहीं वेद जैसे ही बाथरूम के अंदर गया, उसके पास नव्यांशी का कॉल आया था। नव्यांशी को कुछ भी करके अरमान के घर पर उसके साथ रहना था और अरमान उसकी सुन नहीं रहा था। ऐसे में वेद ही था जो उसकी मदद कर सकता था। वेद ने कॉल रिसीव किया और नरम लहजे में कहा, अब टाइम मिला तुम्हें कॉल करने का? अरमान से बात हुई तुम्हारी? मैंने उसे तुम्हारी हेल्प करने को कहा था। हाँ भाई, मेरी बात हुई थी और इस वक्त मैं अरमान के घर पर ही हूँ। भाई, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मुझे यहाँ काफी होमली फील हो रहा है। आप अरमान से बोलो ना कि वो मुझे यहाँ रुकने के लिए कह दे, नव्यांशी ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। नव्यांशी अरमान के घर पर थी। ये सुनकर वेद को झटका सा लगा। वहां पर शिवांशा का भाई रोहन भी रह रहा था। ऐसे में शिवांशा का देवराज के परिवार से जुड़े होने का सच सामने आ सकता था।
वेद ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं नवी, ये अच्छी बात है कि अरमान ने तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन किसी की हेल्प का इस तरह गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपकी बात समझ रही हूँ भाई, लेकिन अकेले रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे ही आप सबकी बहुत याद आ रही है, ऊपर से सारा दिन अकेले रही तो मुझे आपकी और याद आएगी, नव्यांशी ने मायूस आवाज में कहा। नवी, तुम वहां वेकेशन के लिए नहीं गई हो? पूरा दिन काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कब दिन बीत गया, वेद ने जवाब दिया। भाई प्लीज, इतनी सी बात मान लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है शिवांशा भाभी का भाई भी यहीं पर रहता है, मेरी मनन के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई है, नव्यांशी बोली। वो अपनी तरफ से वेद को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। तभी कह रहा हूँ, अरमान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। तुम जानती हो रोहन को भी ज्यादातर हेल्प की जरूरत पड़ती है। ऊपर से मनन, वो तो रोहन से भी ज्यादा चाइल्डिश बिहेव करता है। अरमान का काम बढ़ जाएगा नवी, बी मेच्योर, वेद ने नव्यांशी को समझाया। मैं उसका काम नहीं बढ़ाने वाली हूँ, उल्टा उसकी हेल्प करूंगी। प्लीज, आप अरमान से कहेंगे तो वो मान जाएगा। आई प्रॉमिस, आगे से मैं किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज भाई, मान जाइए ना, मेरे लिए सच में आप सबके बिना रहना मुश्किल है, नव्यांशी ने भारी आवाज में कहा। वो जानती थी कि वेद को मनाने के लिए उसे क्या कहना है। नव्यांशी वेद की सुनने को तैयार नहीं थी और वेद भी जानता था कि वो बहुत जिद्दी थी। अगर उसने वहां रहने की मन में ठान ली थी तो वो कैसे ना कैसे करके उसे मना ही लेगी। अच्छा ठीक है, मैं अरमान से बात करता हूँ, पर मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं सुननी है, वेद ने हार मानते हुए कहा। वेद के हाँ कहते ही नव्यांशी खुश हो गई थी। वो चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच भाई, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको हक कर लेती। अच्छा भाई, आपने हमें पहले भाभी के भाई से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? वो कितना क्यूट है और काफी मैच्योर भी। हमारी शादी जिस तरह से हुई उसके बाद मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। खैर छोड़ो, अब तुम अरमान के साथ रह रही हो तो मुझे यही उम्मीद है कि अपने काम के साथ साथ तुम रोहन और मनन का ध्यान रखने में भी उसकी हेल्प करोगी, वेद बोला। आई प्रॉमिस भाई, नव्यांशी ने जवाब दिया। नव्यांशी से थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करने के बाद वेद ने कॉल कट कर दिया था। नव्यांशी की जिद के आगे हार मानकर वेद ने उसे अरमान के साथ रुकने के लिए हाथों कह दिया था, लेकिन वो जानता था कि ऐसे में अरमान की मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। वेद ने तुरंत अरमान को कॉल किया। उसने अरमान से कहा, मैंने तुम्हें नव्यांशी की हेल्प करने के लिए कहा था, ना कि उसे अपने घर ले जाने के लिए। रात काफी हो गई थी मिस्टर चौहान, और ऐसे में मुझे उसे होटल भेजना सही नहीं लगा। अब वो बच्चों की तरह जिद पकड़कर बैठ गई है कि उसे यहीं पर रहना है। प्लीज आप उसे समझाइए, अगर वो यहां रही तो मेरे भाई को बिगाड़ देगी, अरमान ने जवाब दिया। तुम्हारे भाई का छोड़ो, फिलहाल शिवांशा के भाई का सोचो। मुझे नवी की बात माननी पड़ी, वो बहुत जिद्दी है। कुछ दिन वो तुम्हारे घर ही रहेगी। आई नो इससे तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि उसे रोहन और शिवांशा के देवराज से जुड़े होने का सच ना पता चले, और ना ही इस बात का कि अंकुश ने रोहन के साथ क्या किया था, वेद बोला। जैसे ही अरमान ने यह सुना कि वेद ने नव्यांशी को उसके घर पर रुकने के लिए हाँ कह दी है, उसने झुंझलाकर अपनी मुट्ठी कस ली थी। आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था मिस्टर चौहान, ये मेरा घर है आपका नहीं। मैं एक साथ तीन बच्चों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, अरमान ने लाचारी से कहा। तीन नहीं, सिर्फ दो, और नव्यांशी तुम्हारी हेल्प करेगी, वो बहुत मैच्योर है। खैर थोड़े दिन संभाल लेना, और साथ ही मुझे शिवांशा के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भेज देना ताकि मैं उसका इस सेशन में एडमिशन करवा सकूं। वेद ने बातों ही बातों में शिवांशा का जिक्र छेड़ दिया था। हालांकि नव्यांशी की वजह से अरमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वेद शिवांशा के बारे में इतना सब कुछ सोच रहा था, ये जानने के बाद उसे अच्छा भी लग रहा था। अरमान ने आगे कोई बहस नहीं की और वेद को हाँ कहकर कॉल कट कर दिया था। उसने वेद को हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब अरमान को नव्यांशी, मनन और रोहन तीनों को संभालना था। अरमान कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा नव्यांशी और मनन दोनों साथ में कार्टून्स देख रहे थे और उनके आसपास काफी सारे पॉपकॉर्न बिखरे हुए थे। उनसे अलग रोहन अपनी व्हीलचेयर पर बैठा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था।
अरमान ने आइज रोल की और कहा, और मिस्टर चौहान लगता है कि उनकी बहन मैच्योर है। इन दो दिनों में मेरा वहम तो दूर हो गया, मजबूरी में ही सही, लेकिन अरमान को यह सब संभालना था। वहीं दूसरी तरफ वेद बाथरूम से बाहर निकला तो शिवांशा फिर से जल्दी से उसके सामने आ गई। वेद के बाहर निकलते ही शिवांशा एक सांस में जल्दी जल्दी बोलने लगी, आपने मुझे इमेच्योर कहा, लेकिन इमेच्योर लोग अक्सर लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। आप खुद मेच्योर हो, सोचो आपकी शादी भी एक मेच्योर लड़की से हो तो आपकी लाइफ काफी बोरिंग हो जाएगी। सोचिए अगर आपकी शादी मिस बंसल से। मिस बंसल का जिक्र होते ही शिवांशा बोलते हुए रुक गई थी। वो वेद के सामने उसका जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये अनजाने में हुआ था। वहीं शिवांशा के मुंह से महिका का जिक्र सुनकर वेद के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। चलो, वेद ने हिंट तो दिया कि वो शिवांशा के साथ आगे लाइफ बिताना चाहता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, गैप आया था तो बड़ा पार्ट भी दिया है। अगले पार्ट पर मिलते हैं।